ज्ञानसुनिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेऽपि तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणान्तिके। बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग उत्तरायण कॉलोनी में सौजन्य से आप लोगों को भागवत कथा सुनने का अवसर मिला है। जीवन में यह अवसर कभी कभी आता है। यही जो हम लोग बैठे हुए हैं इसी में लोग लाखों लाखों रुपया लगाते हैं, तब ये भागवत सुनते हैं साथ में। हम लोगों का यहाँ आना भी बड़ा मुश्किल है, वो तो भाग्य से हम लोग आए हैं। आप बिना खर्चे का किसी का कुछ भी नहीं और अनायासी रूप में वो कथा आप लोग सुनने को यहाँ पर आए हैं, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने परम वितरागी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को उनके अंतिम समय में ये कथा सुनाई थी। अभी हमने जो प्रणामी श्लोक मैंने उच्चारण किया ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। इसमें उन्होंने बताया यंग प्रव्रजन तमनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव गोस्वामी जी ये वितराग ऋषि हैं, सुखदेव गोस्वामी के पुत्र रूप में जन्मे। कैसे जन्मे इसकी भी एक उपाख्यान है। ये सुखदेव गोस्वामी जी तोते जैसे दिखते हैं, किंतु ये राधा कृष्ण के विशेष करके राधा जी के ये सुख हैं, जिसको राधा जी अपने हाथों में रखकर और उन्हें श्याम नाम पढ़ाया करते, कृष्ण नाम पढ़ाया करते। उस समय में किसी समय ये सुख बरसाने में राधा जी के हाथ पर बैठे थे और ये दाने अनार की अनार का दाना उन्हें खिला रही और कह रही है तुम कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। सुख पक्षी किसी की बात करने में बड़ा चतुर होता है, ठीक उसका स्वर नकल कर लेगा, जैसे स्वर में कहेंगे वैसे ही वो बोल देगा, ठीक राधा जी के स्वर में ही जैसे उनको पढ़ाती थी ठीक वैसे ही कृष्ण नाम उच्चारण करने। तुलसीदास जी का एक सुक्का था, सुख पक्षी वो उच्चारण करता था, चित्रकूट के घाट पे वैशंतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देश, तो वो पूरा का पूरा उच्चारण करके ऐसा कहता, जैसा सिखा वैसा ही सीखेगा। राधा जी का सुख एक कृष्ण नाम करता था। एक दिन उनके हाथ से उड़ गया, पक्षी का स्वभाव उड़ जाना, उड़ गया और ठीक वहीं से चला सीध में नंदगांव पहुंच गया। दोनों आमने सामने, अधिक दूर नहीं, 4 माइल है, अधिक दूर नहीं है। पहले आमने सामने ये गांव था, वहीं से दिखता था, अभी भी दिखता है, पैदल ही लोग जाते आते थे, अब रास्ता भी बन गया है। तो वो सुख नंदगांव आ गया और वहीं कुंज के पास में एक कमाल का पेड़ था, उस पर बैठ गया और वहीं कृष्ण कृष्ण करने लगा। कृष्ण ने देखा जैसे ये सुख, ये कौन ऐसा बोल रहा है सुख कृष्ण कृष्ण, देखे ये तो राधा जी बोल रही हैं। राधा जी कहाँ ही खोजने लगा, अधिक थोड़ा सा छुपी जाए देखा जी राधा जी कहाँ है, ठीक उनके स्वर में बोल रहा है बहुत मधुर। इधर उधर देखा जिस कमाल के पेड़ के ऊपर में एक सुंदर छोटा सा सूप, लाल लाल होठ उसके चुंच है और कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहा है। उन्होंने उसे बुलाया बड़े प्यार से और कृष्ण की आवाज सुन करके ऐसा कौन जीव है जो नहीं आएगा, झट उनके हाथों पर बैठ गया और उसे अपने हाथों से सहलाने लगे। फिर से बोलो तो क्या बोल रहा था, तो उसी स्वर में उसने कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत मधुर बोलता है ये तो। पशुन को लोभ हो गया कि ये मेरा सुख मेरे पास में रहे। इतने में वो सुख पक्षी बोलता है, फिर एक श्लोक बोला, मैं सुख पक्षी हूं, मेरे जैसा दुर्भागा इस जगत में कोई नहीं जन्मा, यदि कोई दुर्भागा है तो मैं प्रिया जी के हाथों पर, किशोरी जी के हाथों पर बैठा था और मुझे वो अनार का दाना खिला रही थी अपने हाथों से और बड़े प्यार से कृष्ण कृष्ण मुझे कह रही थी। मैं दुर्भागा, मैं उनके हाथों से उड़ गया और उनके यहाँ पर पहुंच गया, शोक करने लगा। देखो तो ये राधा जी के जितने भाव हैं ये सब इसने ग्रहण कर लिए और उनको बस बार बार उसे पढ़ाते, मधुमंगल इतने में आ गए, उनके सखा बार बार पढ़ा रहे। इतने में 2 सहेलियां राधा जी की आई, ललिता और विशाखा जी, बोलिए कृष्ण ये सुपक्षी हमारी सखी का है, ये से दे दो, अरे तुम्हारी सखी का, यदि तुम्हारा है तो तुम उसे बुला लो, मैं से थोड़े पकड़ करके रखा हूं, जैसे ये नहीं जा सकता, तुम्हें छोड़ करके तुम्हारी बात छोड़ करके ये, यदि हमारी सहेली यदि आ जाती वो बुलाती तो वो चला जाता, किंतु हम लोगों से नहीं जाएगा, तो वो उनको आने दो, नहीं तो ये सुख मेरा है मेरे पास रहेगा। कृष्ण उसे प्यार से रखने लगे। ललिता विशाखा जी गई मैया के पास, यशोदा जी के पास, बोली ये कृष्ण ने उनका पक्षी ले लिया है, सुख पक्षी, उसके बिना वो रह नहीं सकती हैं, उसके लिए वो छटपट कर रही हैं, इसलिए जल्दी से लेकर के हमको दे दो, हम उनसे दे आए। कहिए अभी तुम लोग ठहरो यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यहाँ कृष्ण खेल रहे थे, उनके हाथ से सुख पक्षी को ऐसे ले लिया, सब समय कीड़े मकोड़े के साथ में बैठता है और उनको पकड़ करके कहा चलो अभी भोजन करना है, स्नान करना है, कीड़े मकोड़ों के साथ में पक्षियों के साथ में रहेगा, गंदे लड़के, ये कर करके उनको पकड़ करके और घर में ले और तोता भी पकड़ लिया और कृष्ण को बैठा, यही तो बैठो अभी स्नान करो, सखियों को लगा दिया नौकर चाकरों को और स्नान कराने लगे। कृष्ण का मन खराब हो गया, किंतु यशोदा मैया के सामने कुछ कर नहीं सकते, परब्रह्म है, किंतु आज एक गोपी के सामने कुछ, यशोदा मैया के सामने कुछ नहीं बोल पाते, उनको भुला दिया। फिर वो तोता लेकर के और उनको दे दिया, वो लेकर के चले। ये राधा जी की प्रिय सुख है, किंतु जब कृष्ण की लीला समाप्त हो गई, कृष्ण अंतर ध्यान गोलोक वृंदावन में जब चले गए लौट करके, लीला समाप्त होने के बाद में, तो ये कृष्ण इस सुख को कहा, देखो हमारे जाने के बाद में तुम इस जगत में रहना, रामचंद्र चले गए तो हनुमान को रख गए, क्योंकि उनकी कीर्ति को सबसे वो कहते थे और धर्म को उन्होंने बचाया, धर्म की रक्षा की। इसलिए हमारे बाद में जगत प्रशासन चला जाएगा, इसलिए तुम रह करके और भगवत की कथा को हमारे लीला चरित्रों का तुम गान करना और जगत में भगवान की कथाओं का प्रचार करना। जगत में सब कुछ रहे और भगवान की कथा न रहे, भगवान का नाम रहे न रहे, सभी लोग अशुभ हो जाएंगे, अंत में ध्वंस उनका हो जाएगा। हम सभी भगवान के दास हैं, कोई माने और न माने, सभी भगवान कृष्ण के दास हैं। जो नहीं मानता वो अपने पाप से मरते हैं और जो बुद्धिमान है वो भगवान का नाम लेकर के चलते हैं। इसलिए सुख पक्षी को कहा, जो तुम रहो हमारी लीलाओं का जगत में कीर्तन करना और लोगों को सहारा देना जिससे कि हमारे पास में चले। बड़े दुखी हो गए, प्रभु का आदेश भी टाला नहीं जाता, किंतु फिर भी जब वो चले गए तो इनका मन नहीं लगे। प्रभु तो चले गए, उनकी लीला सब समाप्त हो गई, वो लोग बैकुंठ में चली गई। इसके बाद में सुख पक्षी घूमने लगा कि कहां भगवान की कथा मिले उसे मैं सुनूं और कब वो मौका मिले जो जगत में सब जगह में भागवत कथा का प्रचार करूं। सुस्ते 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 चले गए कैलाश में। शंकर और पार्वती जी वहां पर कैलाश में है, परम भगवत भक्त है, वैष्णवानां यथासंभो, वैष्णव में सबसे गुरु हैं शंकर जी, भगवत तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे कि हरि और हर आत्मा एक है, उनसे बढ़कर के भगवत तत्व को जानने वाला दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं, इसलिए वैष्णव के बड़े पूज्य हैं और भागवत की कथा वो सब समय जानते हैं, राम की कथा को भी जानते हैं। उन्होंने ही भूसुंडी जी को राम की कथा सुनाई, उन्होंने भी उनको कौन से ऋषि लोमस ऋषि जी को भी उन्होंने ही कथा कही, उन्होंने ही पार्वती जी को कहा, उन्होंने ही नारद ऋषि को कहा। सब कथाओं के मूल ये शंकर जी हैं, वो यही कथा कह रहे थे, भागवत की कथा पार्वती जी सुन रही थी। एक पेड़ की झुरमुट में बैठ गए, हरियाली जहां पर थी, पत्ते अधिक थे, उसी के बीच में बैठ गए और सुनने। स्त्रियों का स्वभाव कुछ होता है, रंगीली कथाएं होंगी तो जगी रहेंगी और जहां तत्व की कथा आई बस सो जाए। तत्व अच्छा नहीं, उनके दिमाग में नहीं जाता, कुछ है सबके लिए नहीं, पुरुषों में भी ऐसे हैं, स्त्रियों में भी ऐसे हैं, तो जब कथा समझ में नहीं आएगी तो क्या करेंगे, सो जाएंगे। अभी कुछ कहानी के रूप में कह रहा हूं तो ये समझ में आता, और जब जीव तत्व, माया तत्व, भगवान का तत्व, अपना तत्व, संसार के आए जब कहने लगेंगे तो इसमें नींद आ जाएगी। तो वो पार्वती जी प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की कथा सृष्टि तत्व आया, जीव क्या है, भगवान क्या है, किसकी आराधना करनी चाहिए, जीव भगवान का नित्य दास है, जितने भी ईश्वर तत्व हैं भगवत तत्व, इसमें कृष्ण ही परम तत्व है, एते चांद कलाप उनका कृष्णत्व भगवान। हम जब तक संसार के पचड़े में पड़े हुए हैं जन्म मरण होगा, जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक दुख में पड़े। उद्धार का रास्ता एकमात्र भगवत भक्ति है, कृष्ण की सेवा है। जब इन तीतों को बतलाने लगे तो उनको धीरे 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 जम्भाई आई, जम्भाई के बाद में थोड़ी सी ऐसी हुई जाती, उसके बाद में सो गई। कथा पूरी समाप्त हो आई, अब थोड़ी सी बाकी थी उनकी नींद पूरी। अब ये सुख पक्षी वहीं से बैठा हुआ पेड़ से हूं हूं आगे कहिए हूं ऐसे हुंकारी भर रहा। शंकर जी सोच रहे हैं जय पार्वती जी हुंकारी भरती चली जा रही हैं और जगी हुई सुन रही हैं, किंतु वो तो सो गई और सुख पक्षी सुन रहा, बड़े चाव के साथ में, बड़ी सावधानी के साथ में, लग्न के साथ में वो सुन रहा है, एक एक बात का वो पान कर रहा है। सुनना चाहिए तो ऐसे, ऐसा नहीं कभी सो गए कभी सुना, कभी इधर में बात कर रहे हैं, कभी उधर में बैठे, कभी उधर उसके तरफ में देख रहे हैं, सब हरी कथा नहीं आई। इसलिए पार्वती जी सो गई, ये हुंकारी भरता रहा, बड़े ध्यान से सब सुनता रहा। पार्वती जी उठी, जब प्रियतम हमने ये बीच की कथा सुनी नहीं, मैं तो सो गई, तो हुंकारी किसने भरी, हूं किसने किया, तो मैंने तो किया नहीं। तो खोजने लगे, देखने लगे, देखते देखे पेड़ की आग में पत्तों के बीच में एक सुख पक्षी बैठा है, जरूर इसी ने ऐसा किया होगा। उसने कहा जी सारी ये भागवत की कथा सुन लिया, देवताओं के लिए भी ये सुनना बड़ा बड़ी कठिन है, और इसने कथा सुन लिया, अब इसे मारना चाहिए, नहीं तो अनाधिकारी दूसरी जगह ये कहेगा, जिनका अधिकार नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है, जो नास्तिक है वो उन कथाओं को नहीं कहना चाहिए, इसलिए इसको मारना चाहिए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और दौड़े मारने के लिए, वो उड़ा वहां से केदारनाथ से या कैलाश से। बद्रीनारायण अधिक दूर नहीं है, किंतु पहाड़ ऐसे हैं जिनको लंघन करके जाया नहीं जा सकता। कम से कम तो 300-400 माइल चमोली होकर के त्रिजुगी नारायण, केदारनाथ से त्रिजुगी नारायण इत्यादि होकर के और जोशी मठ होकर के और चमोली होकर के फिर इधर से जाना पड़ेगा, बहुत काफी रास्ता है। किंतु वह तो उड़ा और ऊपर से वहां पर एकदम झट पहुंच गया। और शंकर जी भी उड़े, तो जो भी महात्मा है वो भी वहां पर पहुंच गए मिनटों में। वहां पर व्यास जी अपनी पत्नी से, बेटिका जी से यही कथा भागवत की कथा था, दशम स्कंद की कथा चल रही थी और वो बेचारी तन्मय होकर के सुनते हुए ऐसे करती है। इतने सुख पक्षी जाकर के और उनके मुख में घुस गया, पेट में चला गया। भोलेनाथ जी वहां पर आए त्रिशूल लेते हुए, बोले ये कोई सुख पक्षी इधर आया? नन्हे जी कैसे आप आइए बतलाइए तो, आप कैसे पधारे यहां, किस लिए आए? एक सुख पक्षी उड़ता हुआ आया इधर। अरे आया नहीं आया हम पीछे बतलाएंगे, आपको उस सुख से क्या जरूरत है? उसने भागवत की कथा सुन ली है, वो अनाधिकारी है, उसे हम मारेंगे। अच्छा तो भागवत की कथा सुनने से क्या होता है? तो व्यक्ति अजर अमर बन जाता है, कभी मर नहीं सकता, जन्म मरण से अतीत होकर के भगवान के धाम में जाने लायक हो जाता है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब कोई मार ही नहीं सकता, अजर अमर हो गया तो उसे आप कैसे मारेंगे? तो शिव जी को अपनी गलती मालूम हुई, उन्होंने हंस दिया, भी हंस दिए और वहां से वो लौट करके चले गए। अब ये भागवत की कथा होती रही और वो पेट में बैठे बैठे 16 वर्ष तक वो कथा सुनी। कोई कहते हैं 12 वर्ष, कोई भी बात नहीं है, 12 वर्ष या 16 वर्ष उन्होंने पेट में रह करके सारी कथाएं उन्होंने सुना, उपनिषदों का सार सुना, वेदांत का शास्त्र का सब कुछ सुना, इस तरह से श्रीमद भागवत का सार सब कुछ सुना। इसके बाद में व्यास जी ने कहा, अरे तू अपनी मैया के पेट में 12 वर्ष या 16 वर्ष से है, मैया को कष्ट हो रहा है, तुम निकल करके आता क्यों नहीं? वो बच्चे ने उत्तर दिया, अब वो बच्चा बन गया वहां, मैं इसलिए नहीं आता, ये माया है, माया मुझे पकड़ लेगी और मैं संसारिक व्यक्ति जैसा दुख सुख में मरूंगा और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाऊंगा, उस समय भगवान का ज्ञान यह लुप्त हो जाएगा, तो फिर कैसे आएगा? यदि कोई ऐसा हो जो माया को एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, एक पलक के लिए यदि हटा दे तो मैं माता के गर्भ से निकल आऊं, समझे? मैं इसमें समर्थ हूं, मैं माया को हटा देता, तुम आओ। उन्होंने कहा आपके ऊपर में विश्वास नहीं मुझको, यदि स्वयं कृष्ण आकर के कहें तो मैं मान सकता। व्यास जी ने कृष्ण का ध्यान किया और कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने ये सारी बात बतलाई, उन्होंने कहा अरे बेटे तुम मैया के घर में इतना दिन तक पड़ा हुआ है, क्यों तुम क्यों नहीं निकल आता? मैं माया में जन्म लेना नहीं चाहता। अच्छा माया को मैं हटा देता, आप कौन है? मैं कृष्ण। तो ठीक है आप पर हमारा विश्वास। उन्होंने एक सेकंड के लिए माया को हटाया। माया किसको कहते हैं? मां या माने जो, मां माने नहीं है, जो नहीं है उसको वही समझना, इसका नाम है। ये घर किसका है? मेरा है। तुम जन्म से पहले लेकर के आया, मरने के बाद में ले जाएगा? इस ईंट कहां से बना? तुमने बनाया? ईंट की मिट्टी किसने बनाई? पानी किसने बनाया? हवा किसने बनाया? ये खरीद करके कहां से लाएगा? इस पृथ्वी को किसने बनाया? तूने? नहीं, मैं इसका माता पिता नहीं, मालिक नहीं, माता पिता एकमात्र ईश्वर भगवान कृष्ण है। सब कुछ, सारी सृष्टि जो कुछ है सब वही, वो हमारे माता पिता के माता पिता, भाइयों के भाई, बंधुओं के बंधु, वही सखा, वही सब कुछ है। इस चीज को समझना चाहिए। जो लोग इस शरीर को कहते हैं कि मैं हूं और इससे संबंधित समस्त सारी समस्त वस्तुओं को जो संबंधित है, ये घर मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये स्त्री मेरी है, ये पति मेरे हैं, ऐसा ऐसा जो कहते हैं यही माया है, ये शरीर मैं नहीं हूं। उन्होंने एक सेकंड के लिए यह भाव उठा दिया और साथ ही साथ वो प्रकट हुए मैया के गर्भ से चले गए। उस समय नाड़ी भी नहीं कटी, कोई संस्कार नहीं हुआ, जात कर्म इत्यादि जो संस्कार होते कुछ नहीं, और उसी समय घर से निकल करके चल पड़े। 16 वर्ष की तो आई थी, निकल करके चल पड़े। व्यास जी ने देखा बड़ा योग्य लड़का, संसार से अनाशक, यही भागवत का सुनने का अधिकारी है, मैं इसके अतिरिक्त किसको भागवत सुनाऊंगा, इसलिए इसको सुनाना है। किंतु ये तो सुनता नहीं है, तो भागा जा रहा है। जब और गंभीर जंगल में जब चलते चले गए तो उन्होंने कहा हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव गोस्वामी ने कुछ भी नहीं कहा, हा पुत्र और हा पिता, ये सबसे कोई संबंध नहीं, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, कौन किसकी स्त्री, वो तो सीधे चलते चले गए। जंगल से पेड़ों से प्रतिध्वनि आई, उन्होंने कहा हा पुत्र, और प्रतिध्वनि क्या आई, गूंज उठा जंगल हा पुत्र। जब उनके कानों में, व्यास जी के कानों में आई हा पुत्र, ये कहते हैं आओ उधर से, उधर से फिर से आई, कौन किसका पुत्र, इस चीज को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करेंगे। आत्मा अजर अमर है, शरीर में आने का नाम जन्म और शरीर छोड़ने का नाम मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। शरीर पुराना हो गया, कपड़ा पुराना हो गया, उसको छोड़ करके हम नए शरीर में जा रहे हैं, इसमें कौन से भारी दुख है। किंतु छोटा बच्चा जब कुर्ता निकालने लगते हैं उसका गंदा कमीज, तो रोता है, छटपटाता है, नया पहना देते हैं, जब पहनाने के समय तो रोता है, पहना दिया फिर ठीक हो गया। ऐसे हम लोग जन्म के समय भी रोते हैं, कहां कहां क्या 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 करता है, और मरने के समय भी बहुत दुख होता है, एक शरीर को छोड़ करके जिसमें इतनी आसक्ति थी, इसी का नाम संसार। भगवान को हम देखते नहीं, तो उस समय में प्रतिध्वनि हुई हा पुत्र हा पुत्र, और उनको भी छोड़ करके चले गए। जब आगे बढ़े, व्यास जी ने उनका पीछा किया, जो को पुत्र हमारे हाथ से निकल रहा है, इन्हें उसके पीछे पीछे चले। थोड़ी देर के आगे जब पहुंचे, देखा एक सुंदर सरोवर है, उसमें अस्पराएं क्रीड़ा कर रही है। पहाड़ के लोग बड़े सुंदर होते हैं, लड़कियां भी बड़ी सुंदर, अस्पराएं माने पहाड़ी लड़कियां, वो सब उसमें स्नान कर रही हैं। कुछ लड़कियां भी छोटी उम्र के हैं, वो नंगी स्नान कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी चलते गए, उनको देखा, कोई भी बात नहीं, खेल रही हैं स्नान कर। जब आगे बढ़ गए सुखदेव गोस्वामी, तो पिता ये व्यास देव जी आगे आए, श्वेत लंबी लंबी दाढ़ी, केश पके हुए, सफेद सफेद, बहुत वृद्ध हो गए हैं, उम्र भी काफी है, बहुत काफी। लड़कियों ने झट लज्जा से कपड़े पहन लिए और उनके सामने आकर के जरा दूर से ही ऐसे प्रणाम करके नतमस्तक हो गई, सिर नीचा कर। उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा, हमारा बेटा सुखदेव 16 वर्ष का लड़का, अभी नौजवान 16 वर्ष का किशोर लड़का है, परम सुंदर है, इसको देखकर के लड़कियों को लज्जा नहीं आई, और मैं इनके पिता का पिता का पिता का पिता हूं, हमारी नातिनी का ये लड़कियां हैं बराबर की, और हमको देख करके ये इनको लज्जा आई। पूछा लड़कियों से, तुम्हें लज्जा क्यों आई, हम उनसे, हमारे बेटे से लज्जा तुमने नहीं किया। तो वो कहती हैं, आपने तो ये पूछा कि तुमको क्यों लज्जा, उसने तो पूछा नहीं, उसमें और लकड़ी में कोई अंतर नहीं, उसको ध्यान नहीं कि ये लड़की है कि पेड़ है कि क्या है नहीं है, आपको तो ये ज्ञान है कि ये लड़की है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी संसार से परम विरक्त हैं। ऐसा ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी को कुछ दिनों के लिए व्यास जी ने महाराज जनक के दरबार में भेजा था कुछ ज्ञान की शिक्षा करने। सुखदेव गोस्वामी नंगे उनके दरबार में गए, वहां पर पहुंच करके राजसभा के आगे जहां पर दरवाजा है, गेट पर खड़े हो गए। महाराज जनक को पता पहले ही लग गया कि सुखदेव गोस्वामी हमसे पढ़ने के लिए कुछ आ रहा है शिक्षा के। उन्होंने दरबानों को हुक्म दिया, इसको 6 दिन तक उसके सामने रोक रखना, इधर में मत आने देना, यदि सच्चा संत नहीं होगा तो मान अपमान की भावना से निकल करके चला जाएगा, जिनको मान अभी तक है, अपमान का बोध है, जे मेरा अपमान हो रहा है, अभी सच्चा संत नहीं। जिनको क्रोध है, अभी नहीं, इसलिए रोक रखना। यदि 6 दिन तक वहां रहे तो 7वें दिन हमारे पास ले आना। 6 दिन रोक लिया, वैसे ही खड़े रहे, न भूख न प्यास न कुछ, ऐसे खड़े रहे। जब उन्होंने देखा कि इसका मान अपमान का कोई विचार नहीं, तो उसे अंतर खुलवाया। जब भीतर आए तो एक दरवाजे पर देवही पर, उनकी 7 देवहियां थी। देवही माने समझते हैं ना, कंसा, 7 दरवाजे पार होना होता। दूसरे द्वारी पर रोक दिया, किसी ने कुछ पानी के लिए नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, फिर भी ठीक रहे। तीसरी द्वारी में पहुंचाया 7 दिन 8 दिन के बाद, वहां पर सुंदर किशोरी लड़कियों को वहां पर खड़ा कर, कोई पानी दे रही है, कोई फूल की माला पहना है, कोई चंदन पहना रही है, एकदम उनको आकर्षण करने की चेष्टा की। किंतु उनको कोई ज्ञानी नहीं कि लड़की है कि लड़का है, कि कोई है कि नहीं, मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा जी भागवत कथा सुनने का आत्मज्ञान तत्व का अधिकारी, अपनी सभा बुलाया। सभा में वहां पर नारद जी बैठे थे, नारद जी बैठे हुए थे सिंहासन पर। जब ये सुखदेव गोस्वामी आए, उसी के एक बगल में उनको बैठा दिया। एक तरफ हो गए नारद जी, एक तरफ हो गए सुखदेव गोस्वामी, और अपने आप चले गए भीतर राजभवन में। अपनी सुनैना पत्नी को कहा, सुनैना जी परम सुंदरी सीता जी की मैया कितनी सुंदरी होंगी किशोर अवस्था में, ये से समझिए। वो उनको जाकर के बोले, देखो 16 श्रृंगार 32 प्रकार के आवरण, इस प्रकार से सुसज्जित होकर के हमारे साथ आओ। थोड़ी देर में वो सब प्रकार से नक्श से सिख तक, परम सुंदरी तो अपने ही हैं, और साथ साथ में आवरण अलंकारों को धारण करके और भी बड़ी सुंदरी उनको सभा में ले आए और दोनों के बीच में बैठा दिया। एक तरफ में बैठे नारद जी, एक तरफ में सुखदेव, एक बीच में बैठ गई सुनैना। नारद जी को पहली बात याद है, जानते हैं जी माया क्या है, पर झट उनको प्रणाम किया, मैया आपको प्रणाम है, और प्रणाम करके नीचे बैठ गए। और सुखदेव गोस्वामी जी को पता ही नहीं ये कौन बैठा है कि नहीं बैठा है। ऐसे परम विरक्त आदमी भागवत का सुनने का अधिकारी है, पहले ये समझो। इस श्लोक में उसी की वंदना की, सुखदेव जी कैसे हैं, ये भागवत के श्रवण के अधिकारी। जिसको काम है, क्रोध है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, लोग भागवत के अभी श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। महत्पुरुषों का संग करें, फिर महत्पुरुषों की सेवा करें। महत् कौन है, जिनको भगवत भक्ति है वो महत्पुरुष है। जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि संसार में भूले भटके हुए जीवों को ये कृष्ण तत्व देना है, ये तुम भगवान के दास हो, भगवान की सेवा करो। क्रमशः उनको निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम इत्यादि दे, तब वो भागवत का पाठ अधिकारी सुनने का होगा। तो इसलिए ऐसे सुखदेव गोस्वामी को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, जो सचमुच में भागवत श्रवण के अधिकारी हैं, और जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को ये इस कथा को सुनाया। कैसे सुनाया, इस कथा की अवतारणा थी वैसे बड़ी सुंदर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, हमको समय हो जाएगा तो बतला देना, 1 घंटा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म पितामह द्रोण जैसे लोग, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे लोग, कर्ण उनके पक्ष में थे पांडव दुर्योधन के, उसके तरफ से केवल 3 आदमी बचे, बाकी 7 मारे गए। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ में, अपने पुत्र और कलत्र सबके साथ में मारा गया, बस 3 आदमी रहे, अश्वत्थामा और
कृतवर्मा
और द्रोणाचार्य के साले,
कृपाचार्य,
बस 3 आदमी बचे और कोई नहीं बचा। और इधर में कृष्ण बचे और 5 पांडव बचे, सारे लोग मारे गए। भीष्म पितामह अभी तक शरीर ये बाण पर अभी सोए हुए हैं, उत्तरायण आएगा तो जाएंगे। उत्तरायण हुआ, उन्होंने पांडवों को शिक्षा दी, उसी का नाम है शांति पर्व। और ये महाभारत का भीष्म पर्व का ये 18 अध्याय ये गीता है, महाभारत की ये रत्न है। किंतु पहली पोथी है धर्मराज की, और भागवत है पीएचडी की, अंतिम पुस्तक है भागवत, उसमें प्रेम का पाठ है और इसमें तत्व का ज्ञान है। पहले जो गीता नहीं पढ़ेगा भागवत नहीं समझेगा, इसलिए पहले गीता समझो और इसके बाद में भागवत में प्रवेश करो। तो क्या बतला रहा था
ये पांच इधर पंचपांडव
क्यों और सब नहीं बचे। जब ये समाप्त हो गया तो कृष्ण देखा जी जितने असुर थे उन सबका तो ध्वंस हो चुका, किंतु अभी कुछ बाकी हैं। जिस कांटे से मैंने कांटा निकाला है उस कांटे को भी फेंकना है। ये कांटे को निकालने वाला कांटा क्या था? यदुवंशी। यदुवंशियों के द्वारा सबका ध्वंस कराया असुर लोगों को, धर्मात्मा केवल बचे रहे और इसके बाद में अपने वंश को भी लड़ाई में उनको समाप्त कर दिया। वो लोग भी जब चले गए तब उन्होंने आदेश दिया अर्जुन को जो अपने पुत्र परीक्षित जी को, अपने प्रपौत्र परीक्षित जी को अपने हस्तिनापुर का राज्य देना और मथुरा का राज्य हमारे प्रपौत्र हैं, पुत्र के पुत्र के पुत्र वह है बद्रीनाथ को देना। ऐसा आदेश देकर के वो चले गए। पांडव लोग भी चले गए। पांडवों के बाद में इधर में परीक्षित राजा हुए और इधर हुए
बद्रीनाथ।
कुछ दिनों के बाद में कृष्ण के जन्म के तिरुभाव के बाद कृष्ण के अप्रकट होने पर ही कलिकाल का समय आ गया, द्वापर युग समाप्त। महाभारत के हो जाने के बाद में जिस दिन कृष्ण ने छोड़ दिया इस जगत को उस दिन से कलिकाल आ गया। एक दिन परीक्षित जी कहीं गए हुए थे, मृगया गए थे या युद्ध विजय करने के लिए गए थे, वहां से बड़े भूखे प्यासे लौट रहे थे, बहुत प्यास लगी। वो जाकर के देखा जैसे यहां पर जंगल में पानी कहां मिलेगा। उन्होंने देखा एक ऋषि बैठे हुए और एकदम ध्यानस्थ है, पैर को पैर कर सके योगी की मुद्रा में बैठे हुए और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय महाराज परीक्षित वहां पर उपस्थित थे। परीक्षित महाराज जी बड़े परम धार्मिक हैं, कृष्ण की कृपा है उन पर और कृष्ण को, कृष्ण ने इनको अपनी गोदी में खिलाया था, गर्भ में अपनी इनका इनकी रक्षा की थी। इतने बड़े ज्ञानी हैं तो भी भागवत को प्रकाश करने के लिए ऐसा भी नहीं किया। कहा जिसे जोगी लोग भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इधर मुझे प्यास लगी है, प्यासे को पानी नहीं पिलाया और ध्यान कर रहे हैं तो उसे क्या लाभ है, इस धर्म का कोई माने नहीं। जैसे आजकल के लोग कहते हैं, आजकल के लोगों के लिए ऐसा भी नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान का ध्यान क्या। आई थिंक, मैं सोचता हूं क्या मंदिरों में जाने की अपेक्षा फुटबॉल खेलना अच्छा है, ये विवेकानंद जी कहते हैं। आई प्रेफर टू रीड गीता देन टू गो इन टेम्पल
प्ले फुटबॉल
या मैं फुटबॉल खेलना समझता हूं, उसे शरीर में ताकत आती है। मंदिर में जाने से क्या होगा, मंदिर में वहां पर भगवान है, गरीबी दरिद्र ही भगवान है, तो धनियों ने क्या कसूर किया, मछलियों ने क्या कसूर किया कि उनको मार करके खा जाते हैं, इसलिए उसमें धर्म कर्म की कोई बात नहीं। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आजकल विवेकानंद जी को बहुत सम्मान देते हैं, किंतु हमारी संस्कृति के व्यास जी के विचारों को, सुखदेव गोस्वामी के विचारों को, हमारे रामानुज मध्व इत्यादि विचारों को उन्होंने नहीं ग्रहण किया। वो शून्यवादी एक तरह से थे, बौद्धवादी थे, इसलिए बौद्धों को जैसे इस देश से निकाल दिया गया और फिर बौद्ध आ रहे हैं क्योंकि कलिकाल है ना, शून्यवादी, हम शून्य से आए हैं, शून्य में मिल जाएंगे। हम लोग की ये थ्योरी नहीं है, हम लोग की थ्योरी क्या है, पूर्णम क्या है,
पूर्णमदम,
पूर्णम मदम,
पूर्णम
इदम, पूर्णम इदम, पूर्णम उदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमेव आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण से ही यदि पूर्ण भी ले लें तो वो पूर्ण रहता है, इन्फिनिटी माइनस एनी अमाउंट, इवन सब कुछ उसमें रहे ले लिया जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पूर्ण माइनस एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो, कोई भी अदद हो, पूर्ण में से लिया जाए, यहां तक कि पूर्ण से पूर्ण भी ले लिया जाए तो वो पूर्ण ही रहता है। ये कृष्ण भगवान है, बाकी सब चीजें अपूर्ण है, हम उनके अंश, हमारी ये संस्कृति है। तो क्या बतला रहा था?
तो प्यास लगी थी,
बोलिए क्या पानी नहीं पिलाएगा?
पानी नहीं पिलाया। लोग कहते हैं कि पानी नहीं पिलाएगा, ये धर्म क्या? अरे जिनको होश ही नहीं है, ब्रह्म में चित्त लगाए, वो चाहे तो अपने ध्यान से करोड़ी करोड़ी लोगों को, विश्व ब्रह्मांड को पानी पिला सकते हैं। इसलिए भगवान में उनका चित्त लगा हुआ है, इनको होश नहीं, इनकी बातों को सुना नहीं, उन्होंने इनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने एक सांप मरा पड़ा था, उसको उठाया और उनके गले में लगा दिया, क्या तुम्हारे लिए यही पुरस्कार है, यही तुम्हारा अभिनंदन है? अभी वोट में जीत करके जाएंगे ना कोई कार में, या उनके लिए रथ बनाया जाएगा, विजय रथ, उस पर चढ़ करके जाएंगे, गजरों की माला से हजारों हजारों लाखों मालाएं उनके गर्दन में आ जाएंगी और निकालते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, ये स्वागत है, अभिनंदन। तो उनके लिए, तुम्हारे लिए यही अभिनंदन है, तुम किसी को पानी नहीं पिलाता तो तू मरा हुआ है, मानो ये भाव को दिखला रहे। उन्होंने गले में जब तीन बार उनको लपेट दिया, आप चले गए। जब जा रहे हैं तो सोचते, अच्छा यदि ये सचमुच में ये ऋषि हुआ और सचमुच ये भगवान को ध्यान कर रहा होगा तो हमारी क्या गति होगी? तो तुम्हें ग्यारह शाकल में वैष्णवों का, संतों का, महात्माओं का अपमान नहीं करना चाहिए, तो मैंने तो अपमान कर दिया। अब ये सोचते सोचते जा रहे थे, इतने में ऋषि का एक छोटा सा 5 वर्ष का लड़का खेल रहा था। ऋषि का नाम था समीक ऋषि, उनका पुत्र खेल रहा था 5 वर्ष के नंगे बच्चों के साथ। बच्चों का, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सांप डाल दिया है, सांप डाल दिया। बस झट उसने हाथ धोया, नदी बह रही थी, नदी से पानी आचमन किया और आचमन करके गायत्री मंत्र इत्यादि पाठ किया और पानी ले लिया। होठ कांपने लगे क्रोध से, आंखें लाल हो गई, वही छोटा सा बच्चा जिसने हमारे पिता के गले में यह सर्प लगाया, सातवें दिन यही तक्षक और उसे डसेगा और उसको कोई नहीं बचा सकता, जरूर मरेगा, यह कहकर अभी संपात पानी छोड़ दिया। ऐसे ही खुली जगह और जाकर के पिताजी के गोदी में बैठ करके रोने लगा। पिताजी के कुछ देर के बाद में उसका रोना सुन करके सुना जो थे वो उठ गए, होश हुआ, ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा तू रोता क्या है? पिताजी आप देखते नहीं आपके गले में सांप है, किसने लगाया, तुमने ये क्या किया? तुम अज्ञानी बालक, जिन ब्राह्मणों को सहिष्णुता नहीं है, क्षमा गुण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं, तू ब्राह्मण का लड़का शायद नहीं, ये मेरे अंदर में कोई दोष होगा इसलिए तू ऐसा पैदा हुआ। एक धर्मात्मा राजा, तुमने उसको ऐसा भी संपात कर दिया, परीक्षित को तुमने अभी संपात किया, अरे वो नहीं रहेंगे तो जगत में प्रजाएं अधार्मिक हो जाएगी, स्त्री अपने रास्ते पर चल नहीं सकेंगी, दिन दहाड़े उनको लूट लिया जाएगा, सच्चे लोग जो धार्मिक हैं वो लोग चल नहीं सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले इधर भी हो रहा था, गुंडागिरी होती थी, अभी उत्तर प्रदेश में नंगा नाच चल रहा था, ऐसे बंगाल में भी कभी कभी होता है, जहां पर राजा का शासन अच्छा नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति नहीं होते, उनके राज्य में ऐसा ही होता है, सभी लोग बड़े दुखी रहते हैं। तो तुमने क्या किया, उस राजा को तुमने अभी संपात कर दिया, उसके मरने के बाद में क्या होगा यह कभी विचार नहीं किया? सोचे जो होना था वही हुआ, खैर इसमें को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, तर्क बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने एक छात्र को बुला, बटू इधर आ, परीक्षित महाराज जी गए हैं अभी हस्तिनापुर, अभी जा रहे होंगे, तुम जाकर के कह देना ये सातवें दिन उनको तक्षक दसेगा, ऋषि के पुत्र ने ऐसा साफ दिया है, वो जो कुछ करना है अपना कर ले परमात्मा। ये जल्दी से दौड़ता हुआ गया, वो राजधानी में आप प्रवेश करने वाले ही थे, इतने में कुछ जाकर के कहा, महाराज गुरु जी ने संवाद दिया है, सातवें दिन आपको वही सब काटेगा जिसको आपने गले में लगाया। सोते ही हाथ जोड़ करके खड़े, ओह मेरा कल्याण है आज तो, ये तो अभिशाप नहीं, ये तो वरदान है मेरे लिए, मैं सोचता था कि हमारा कहीं परमार्थ नष्ट न हो, शरीर नष्ट हुआ ये तो आज में कल जाने वाला है, इसमें कोई बात नहीं आ रहा है समझ में ना, शरीर आज कल जाएगा, किंतु इसमें से यदि परमार्थ नष्ट हो गया, मैं कृष्ण का सेवक हूं, दास हूं, ये भाव नष्ट हो गया और भक्ति की वृत्ति नष्ट हो गई, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा नष्ट हो गई, तो ये सर्वस्व हो गया। ये शरीर मिला अभी तो दूसरा नया मिल जाएगा, एक शुक्र अभी शरीर है वो कहीं मनुष्य शरीर ले लेगा, जहां भी जाएंगे ये सब चीजें मिलेंगी, आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु यदि इसमें भक्ति यदि नष्ट हो गई होती, हमारा धर्म नष्ट हो गया होता तो हमारा तो सर्वस्व हो जाता। जैसे ये प्रभु का वरदान है हमको, अब ये संदेश आया हम लोगों के लिए, चार प्रकार के संदेश हैं। जिस समय में केश पक जाए तो समझो ये पहली घंटी हो गई, आंखों की रोशनी कम होने लगे तो समझो क्या ये दूसरी घंटी है, शरीर दुर्बल होने लगा तो समझो दांत टूट गया, और पांचवी घंटी में जय सिया राम बस तैयार हो जाओ। वहीं से हम लोग तैयार नहीं, हम सोचे जो पौरुषी माल लेकर के आए हैं, पट्टे पर लिया है इसको, ये पट्टा नहीं चलेगा, किरायेदारी और किराए मकान और किरायेदार का यहाँ पर केस 10-10, 20-20 वर्ष चलता है, वहां पर एक सेकंड नहीं चलेगा, मकान को खाली करना पड़ेगा, अभी अभी आदेश आया, एक सेकंड की विलंब नहीं होगा, अभी छोड़ देना पड़ेगा शरीर। इस चीज को समझो, कब आएगा फरमान कोई पता नहीं, इस चीज को समझो। इसलिए परीक्षित महाराज जी वहीं पर अपना मुकुट उठा करके फेंक दिया, धनुष मान वहां पर रख दिया, राजकीय पोशाक रख दिए, एक धोती पहन लिया बस, और वहीं से गंगा के तट पर। राज्य का क्या होगा, कौन रहेगा पालन करेगा, ये सब कुछ व्यवस्था नहीं की, इसकी व्यवस्था होती रहेगी, हठात यदि मर जाएगा तो कौन व्यवस्था करेगा संपत्ति की, इसलिए संपत्ति की व्यवस्था वो हो जाएगी अपने आप। बस चले गए और गंगा में स्नान किया और उसी पर बैठ गए गंगा जी के सामने, और वहीं पर प्राय उपवेशन किया। प्राय उपवेशन मैंने क्या, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु की चिंता करना, अब मुझे क्या करना चाहिए 7 दिन में। और इतने में भारत वर्ष के 88,000 ऋषि, नारद जी, व्यास जी, कपिल जी, गौतम जी, कभी हभी अंतरिक्ष पलायन इत्यादि ऋषि लोग, सनक सनंदन सनातन ये सब ऋषि लोग, जितने भी वशिष्ठ विश्वामित्र इत्यादि जितने ऋषि हैं, सब बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं, सब लोग वहां पर उपस्थित, बेतार का तार। अभी तो चल रहा है ना ये, इससे भी बहुत उन्नत, सब लोग अपने आप वहां पर उपस्थित हो गए। और इतने में एक छोटा सा बालक आया, सांवला सा, परम सुंदर, नंगे, स्त्रियां उसके ऊपर में धूल डाल रही, बच्चे कंकड़ मार रहे थे, कोई ताली बजाई, पगला आया, ये कौन था? उनको भ्रूक्षेप नहीं, कौन क्या कर रहा है। जब सामने आए, नारद जी उठ करके खड़े, व्यास जी उठ करके खड़े हो गए, ऋषि लोग सब खड़े हो गए, ये महाराज परीक्षित आसन छोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और सब लोगों ने इनको लेकर के राजपूत सिंहासन पर बैठा दिया, जहां पर ये मैं बैठा हूं। इसको कहते हैं व्यास आसन। भगवान की लीला कथाओं का जो वर्णन करता है उसको क्या कहते हैं? व्यास। व्यास मैंने एक सेंटर से, एक पॉइंट से लेकर के चारों तरफ में जो सर्किल खींचा जाता है वो तो सर्किल हुआ, और ये मूल केंद्र बिंदु हुई, और इस केंद्र से जितनी भी लाइनें हैं जो केंद्र से उस सेंटर तक सर्किल के एक पॉइंट से मिलाती है, इसको कहते हैं व्यास। जो भगवान की लीला कथाओं को एक सेंटर से भगवान से रहते हुए भी सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड में प्रचार करता है उसको कहते हैं, जो सत्य में प्रतिष्ठित हो। अब ये व्यास जब तू वहां पर बैठाया, इसमें उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, यहीं तक मैं समाप्त करूं, प्रश्न उनका जरा सुन लीजिए, आप लोग विचार करें। पहला प्रश्न ये महाराज, मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, व्यास जी की कृपा पर हुई है, इसलिए आप, पहला प्रश्न ये है मेरा कि सभी जगत में मरेंगे, किंतु अभी इनको मरना निश्चित हो गया, ये एक दिन में मरेंगे, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, और आज न कल न परसों जरूर मरेंगे। जिसने जन्म लिया जातक से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से जो मरे हैं उनको भी जन्म लेना होगा, अभी जो बच्चे हैं उनको भी मरना पड़ेगा, और जो मर रहे वाले हैं वो भी फिर जन्म लेंगे। जब तक कि भगवान की भक्ति नहीं होगी, दिव्य ज्ञान नहीं होगा, तब तक मरते जन्मते रहेंगे। इसी का नाम है भव चक्र, इसी का 99 का फेर कहते हैं, इसमें जो घुस गया निकलना बड़ा बात। तो जो अभी मरने के लिए तैयार है, मुमूर्षु है, उनको क्या करना चाहिए, उस समय दान दक्षिणा करने से होगा कुछ? तपस्या करेंगे न योग करेंगे, ये सब काम कुछ नहीं होगा। और जो आज न कल न बरसों जो मरने वाले हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है, यही हमारा प्रश्न है। बड़े प्रसन्न हुए और इन्हीं का जो उत्तर दिया गया इसी का नाम फागुन। भगवान अपने पाने के लिए जो कुछ भी उपाय बतलाते हैं उन उपायों को ही भागवत कहते हैं, इसी का नाम है भागवत। कृष्ण ने स्वयं अपने पाने के लिए जीवों को उनको सुखी शांति बनाने के लिए नित्य काल सुखी रहने के लिए जो उपाय बतलाए हैं भागवत में उसी को कहते हैं भागवत। इससे बढ़कर के वो कोई धर्म नहीं, धर्म एक ही है जीव मात्र का, चाहे वो क्रिश्चियन ईसाई बौद्ध कोई भी हो, पशु पक्षी कीट पतंग जितने हैं सबका एक ही धर्म है क्या, भगवान की सेवा। अब रहने के लिए जो धर्म आजकल हो रहे हैं ये सब रहने के लिए कुशलता के लिए ये नीतियां केवल मात्र है, ये धर्म नहीं है। धर्म बदला नहीं जा सकता, आज एक हिंदू है मुसलमान हो गया तो ये तो बदल गया, तो ये धर्म कहां रहा? कोई ईसाई है ईसाई से हिंदू बन गया। कल एक मैंने देखा इलाहाबाद के ब्राह्मण, उनको कल देखा जैसे वो दाढ़ी ओढ़ी रखकर, मैंने कहा जैसे आपको इस रूप में देखा, मैं अब ईसाई धर्म ग्रहण कर, उनका नाम क्या हो गया, क्या फ्रेडरिक या क्या नाम उनका हो गया, मैंने एक दिन में बदल गया, ये धर्म नहीं है। धर्म बदल नहीं सकता, इसकी व्याख्या मैं कल करूंगा और इसके बाद भी कल करूंगा। अभी हम लोग कीर्तन करके आरती करके आज समाप्त। जय जय सभी लोग बोलो जो
राधारमणी गोविंद जय जय
बोलो
राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद
जय जय गोपाल। अच्छा और क्या चल सकते
रास्ते में कंप्लीट करती हूँ, तब तक की जरूरी आ सकती एक बाइक तक और कितना ऊंचा फेर कर दिया छोटे छोटे पत्थर के ऊपर और एक बार से एक पत्थर लेकर के उसने उसी के मन छोटे छोटा है उसको मिला दो, तुम बात कर सकते हो जिसको एक नंबर बढ़ा के नहीं बढ़ा बढ़ गया ना नहीं करके एक हो गया क्या, किंतु उसको ऐसा करो लाल वन से रंग दो और उसमें मिला दो तो क्या होगा
आसान से निकलेगा।
अच्छा और थोड़ा सा आगे, एक क्लास में एक 100 लड़के हैं, एक नया लड़का पढ़ने के लिए उसको उसको भर्ती कर दिया, तो वो क्लास में गया ना, तब कितने लड़के हो गए, 1000 लड़के थे, एक और मिल गया तो कितना हो गया, 1001 हो गया ना, मिल तो गया किंतु बराबर हो रहा है ना, वैसे बढ़ गया,
बढ़ गया
क्लास तो वही रहा, क्लास 6 रहा या 8 रहा, किंतु एक लड़का बढ़ गया, वो मिलने से उस बच्चों में मिलकर के एक हो गया ऐसा नहीं, जब ये क्लास एक क्लास में क्लास किसको कहते हैं, 100 बच्चे हो या जितने भी 10, 20, 50 हो, उसमें टेबल बेंच हो, एक मास्टर के लिए चेयर अलग हो, मास्टर रहेगा बोर्ड रहेगा उसको डस्टर रहेगा
पेंसिल रहेगा
पेंसिल रहेगा
बोर्ड रहेगा
ये सब रहेगा, पानी पिलाने वाले नौकर या नौकरानी रहेगी, ये सब मिलकर के तब एक क्लास होता है। यहाँ पर हम कितने आदमी हैं, एक आदमी और आया इसमें मिल गया तो इसी में हम लोगों के अंदर में घुस गया शरीर के अंदर नहीं और अलग रहा। ऐसे ही भगवान में जो जीव मुक्त होकर के मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं जैसे एक आदमी मिलता है, किंतु उनकी संख्या बढ़ जाएगी संख्या कम जाएगी ना? एक नहीं होंगे, एक नहीं कभी नहीं कोई नहीं, दूध में दूध नहीं मिलेगा, उसके अलग अलग कण होते हैं बड़े कुछ होते हैं ना, दूध में दूध मिलाओ तो एक हो जाएगा, ये गाय के दूध में भेड़ का दूध मिला दो मिल तो गया एक होगा, गाय के दूध में गाय का दूध भी जो अणु परमाणु है वो एक होंगे, इसलिए कभी भी कोई चीज में कोई चीज मिल करके एक नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म मिलकर के हम एक नहीं होंगे, इस चीज को समझ के लिए थ्योरी ही करते हम जीव ही जीव रहेंगे भगवान की सेवा को पाएंगे, इसके का नाम भक्ति है। और वही बात ही सन्यासियों में हमें यही अंतर
है।
इसको एक ही मानते हैं, एक ही मानते हैं,
एक जीवात्मा परमात्मा
एक मानते।
तो जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग नाम क्यों हुआ? गीता में कहते हैं मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा कहने का जरूरत क्या? और तुम सभी लोग हमारे को समर्पण करो, ये कहने शरणागत हो, ये कहने की जरूरत क्या? ब्रह्म ब्रह्म का शरणागत होगा। आप दो ब्रह्म है कि एक ही ब्रह्म है? एक ही, किंतु हम जीवात्मा के साथ एक। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति करना, भक्ति माने सेवा, भगवान की हम सेवा करें मुक्त होकर के, ब्रह्म में मिल करके एक है। यदि कहो जीवात्मा परमात्मा अलग है इस समय व्यवहार के, किंतु है एक ही, तो अलग क्यों हुए? ब्रह्म तो सर्वज्ञ है और निर्मल है, तो वो ये जीव क्यों हुआ, जगत क्यों हुआ, इतने क्यों हुए? क्यों डिफरेंस है ना? ये माया में बद्ध जीव क्यों हुआ? भगवान ब्रह्म क्यों नहीं हो गए? ये तो है, किंतु ब्रह्म कभी भी माया में नहीं फंसेगा, क्योंकि माया का वो अधीश्वर है, हम माया के अधीन है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो वो जीव ब्रह्म के साथ में कैसे एक होगा? अर्जुन कभी कृष्ण बन गया? शंकर जी कभी मिल गए? शंकर जी सब समय वैसे, ये राधा जी कृष्ण मिलकर के कभी एक हुई?
नहीं
ऐसा नहीं, अद्वैत की बात, अद्वैत नहीं, अद्वैत कहते हुए भी भेद और अभेद होने पर भेद ही प्रबल प्रबल है। भेद नहीं रहेगा तो उनकी सेवा सब समय कैसे करेंगे, प्रेम कैसे होगा? इसलिए भेद अभेद होने पर भी भेद की कोई प्रतीति नहीं है, भेद की ही प्रतीति, किसी में सेवा का शुद्ध भाव मुक्त है।
श्रीरामदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते दे प्रणमामि हरि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां चरणान्तिके। कल हम लोगों ने श्रीमद्भागवत की कथा प्रारंभ की थी। कैसे भागवत का प्रारंभ हुआ? परीक्षित महाराज जी को इसको बच्चे को कर महाराज जी को कैसे अभी संपात हुआ और गंगा के किनारे पहुंचकर वहां पर खाना पीना छोड़ दिया। सात दिन तक, सातवें दिन में इनकी मृत्यु होनी है, इसलिए अब से खाना पीना, सोना
दूसरों से बात करना ये सभी बंद कर दिया उन्होंने। इसको कहते हैं प्राय उपवेशन। और भारतवर्ष में जितने भी या विश्व में आज जैसा छोटा भारतवर्ष नहीं था उस समय कास्पियन सागर के पास में हमारे कश्यप ऋषि रहते थे। उसे इसका नाम पड़ा कश्यप से कश्यप उसका अपभ्रंश हो गया। उसी प्रकार से हमारे मंगोल ऋषि मंगोलिया इत्यादि में रहते थे। अभी हम लोगों के देखते देखते बर्मा सिलोन पाकिस्तान ये सब इसमें से निकल गए। तो उसमें भारतवर्ष बहुत बृहद था। वहां पर कितने हजारों लाखों ऋषि रहते थे वहां पर उपस्थित थे। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग उस समय टेलीफोन फ्रैंक कॉल या इस तरह की कोई चीज की जरूरत नहीं थी। उस समय में शब्द विज्ञान इतना उन्नत था एक सेकंड के अंदर में सबको मालूम हो गया और ऋषि महर्षि लोग वहां पर सब उपस्थित हो गए। उसी समय में गुरुदेव गोस्वामी आए। कल उसकी मैंने अवतारणा की है। तो उस समय में सुखदेव गोस्वामी आए। उन्होंने दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न, जो अभी मरने के लिए तैयार बैठा है, अभी तुरंत प्राण निकलने वाले हैं, उस व्यक्ति क्या क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। और दूसरा, आज कल परसों वर्षों मरेगा जरूर, उसके लिए क्या कर्तव्य। हमारे सामने भी यही समस्या है किंतु हम उसको ओवरलुक कर रहे हैं, नहीं समझ रहे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है हाथ उठाए तो जब मैं नहीं मरूंगा, जरूर मरना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीच में नहीं मर गया तो बूढ़ा नहीं हो जाएगा या बूढ़ी नहीं हो जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई रोग ही नहीं हो, इसलिए मरना जरूरी है। इसलिए जो अभी तुरंत मरने वाले हैं, तुरंत कहीं बैठे हैं, एक सेकंड की भी देरी नहीं, उनको क्या करना है। यानी दिन निश्चित हो गया है। परीक्षित महाराज का तो 7 दिन का गारंटी था जिसके बीच में नहीं मरेंगे। हम लोग की कोई गारंटी है? कोई दे सकता है गारंटी? कोई गारंटी नहीं, जरूर मरना पड़ेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, जो 7 दिन के बाद में या परसों तरसों मरेंगे उनके लिए क्या करना चाहिए, और जो अभी तुरंत मरने के बैठे हैं उनको लिए क्या करना चाहिए। अब आप ही लोग विचार करके देखिए क्या करेंगे। एक छोटी सी लौकिक कहानी सुना देता तब आप लोग समझेंगे इस विषय। कोई एक वैष्णव हमारे ही जैसे थे, वो किसी राजा के पास में, धनी के पास में गए और उनके संतरियों को उन्होंने कहा, जैसे मैं राजा से 2 मिनट के लिए मिलना चाहता, 1 मिनट के लिए। राजा जी से कह करके यह ऑर्डर ले आओ, मैं उनसे मिलूं। राजा ने देखा जैसे ये तो जरूर भीख मांगेगा, कुछ मांगने के लिए आया होगा, इसलिए उन्होंने कहा जी आज समय नहीं है, कल परसों आने के लिए कहना। वो लौट गए, परसों आए ठीक समय पर। फिर खबर दिया, उन्होंने कहा जैसे अभी समय नहीं है, बहुत मेरे काम है, कदना जैसे 2 दिन के बाद में आए, यदि छोड़ने वाले नहीं थे फिर आए। उन्होंने कहा जैसे रोज रोज आता है, कभी अभी समय नहीं है, जब समय होगा तो मैं देखू। चले गए और जाकर के उनके राज घर में गए और किसी को खबर दिया, महारानी से कह दो जैसे एक साथ कोई साधु आया है, उनसे मिलना चाहता है। स्त्रियां कुछ कोमल स्वभाव की होती हैं, अच्छा जाओ बुला लाओ। जब आए तो उनको अच्छी तरह से बैठाया, पूछे हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज आपको क्या चाहिए, आपको क्या दूं, क्या सेवा करूं। कहे नहीं, सेवा की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आया था एक काम के लिए, राजा से मिलना था, राजा मिले नहीं, हमको ये बतलाना था जो मैं ज्योतिष विद्या जानता हूं और मेरी ज्योतिष विद्या अब भ्रांत है, कहीं भ्रांत नहीं होगी, इनको 7 दिन के बाद में मरना है। 7 दिन तो हमको आने जाने में लग गया, 15 दिन की आयु में मैं आया था, किंतु अब 7वें दिन इनको जरूर मरना है, कोई रोक नहीं सकता, यह भ्रांत पाए। रानी घबरा गई, उन्होंने कहा जिसे जो कुछ करना है 7 दिन के अंदर में कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये क्या करके वो तो चला गया। उन्होंने राजा को बुलाया, राजा भी दौड़ते हुए आए। अब यहाँ पर उनको कल परसों का समय नहीं देना है, अपनी पत्नी है ना, इसलिए नहीं। इसलिए उनको जल्दी से बुलाया, वो आ गए। क्यों हमको जल्दी से बुलाया? तो इसलिए बुलाया जी आपको 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। एक कोई साधु आए थे, वो बड़े भारी ज्योतिषी हैं, वो कह रहे हैं कि जरूर 7वें दिन मरे। तो वो भी घबरा गए। ये कैसा आदमी था? ये सिर पर केस नहीं थे, मुंडन था, चोटी थी मोटी, गले में तुलसी की माला थी और ऐसा लंबा तिलक था। बड़े गौर वर्ण के थे, उम्र 40 वर्ष की थी। ठीक है, अपने लोगों को लगा दिया जी खोज करके लाओ तो कहीं, अभी अभी तो थोड़ी देर की बात है, कहीं ना कहीं होगा। खोजते खोजते पास ही गांव के उधर में कहीं नदी थी, उसके किनारे फूटी थी, उसी में भजन कर रहे थे। उनको बुलाया, वो आ गए। आगे तो उनको सिंहासन पर बैठाया, बड़े आदर जत्न के साथ में पूछा जी महाराज आपने कहा जी आप मेरी मृत्यु होगी, जरूर होगी, 7वें दिन जरूर तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो उनको भी साथ में यही करूंगा, यदि नहीं हो तो हमको जो कुछ हो तुम करते हैं। महाराज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या तुम कुछ करो जो तुम्हारे लिए करना है। महाराज अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा एक बात करो, मैं ज्योतिष विद्या के द्वारा ये भी देखता हूं कि तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहां पर तुम्हारे लिए नंदन कानन और पीने के लिए अमृत और सुंदर सुंदर चीजें वहां पर जो कि इस विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है तुम्हारे लिए सब प्रस्तुत है। किंतु महाराजा जी एक बात है, वहां पर आजकल जैसे बंबई में मच्छर हो गए हैं तो वैसे वहां पर भी कुछ मच्छर हो गए हैं, बड़े बड़े काले काले, काटने के साथ में वहां पर भी मलेरिया हो जाने का डर है। इसलिए वहां पर मच्छरदानी भी है किंतु कोने में थोड़ी सी फटी हुई है, उसमें से मच्छर घुस सकते हैं। एक बात कीजिए, यहां से सुई और थोड़ा सा धागा ले जाएंगे, वहां पर रफू कर देंगे, सिलाई कर देंगे, ठीक हो जाएगा। सुई धागा कैसे मैं ले जाऊंगा, ये शरीर भी तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं जा सकता। तो आपने सारा जीवन कमाया और जो किया बेकार का, ये क्या किया यदि उसमें से एक सुई और धागा भी नहीं ले जा सकते? कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुई धागा लेकर के जाए मरने के बाद में? कोई कुछ नहीं लेकर के जाएगा, ये हाथ पसार करके जाएगा, शरीर भी आग में जला दिया जाएगा, नहीं जलाएगा, कीड़े उसमें से हो जाएंगे, हमें तो सियाल कुत्ते ये खा करके तकलीफ करते हैं, यही तो शरीर की अंतिम स्थिति है। तो आप लोग ये समझिए, ये 7 दिन की बात की, आपने सारा जीवन भर जो कमाई कर रहे हैं इसमें से क्या चीज आपके साथ में जाएगा, इसको धागा भी नहीं गया तो, इसलिए विचार कीजिए क्या करना है। तो यदि अभी मरने वाला है तो उसके कान में राम राम सुनाओ, कृष्ण कृष्ण सुनाओ, और तुलसी हो और गंगा जल तो उसको दे दो, अवश्य में गति होगी उसकी। आजकल तो अस्पतालों में आपको समय नहीं मिलेगा, जो उनको नाम सुनाएंगे वो तो वहां पर रखेंगे जहां पर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसको समय नहीं, और उसी बीच में मर गया। कोई भाई बंधु भी वहां पर नहीं जा सकता, ऐसे ही बिना पानी दिए हुए ऐसे ही कराते और बेहोश होते हुए कोमा में मर गए। तो ये करें, देखो यदि 1 सेकंड का भी समय है, एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगी नाम निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमारे पूर्व पूर्व जो व्यास नारद ब्रह्मा इत्यादि जी हैं, शंकर जी हैं, इन लोगों ने समस्त शास्त्रों का तात्पर्य दोहन करके सार रूप में कहा। यदि एक मनुष्य भी मर रहा है उसके कान में बस हरे कृष्ण राम, कलयुग में महामंत्र है ये कृष्ण नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात सुनाओ देखो जो उसकी क्या गति होती है। आप लोग तेने आंखों से देखे नहीं ये क्या गति, जिनको देखने का वो देखेंगे, समस्त दुखों से सदा के लिए रुझ करके भगवान के चरणों को प्राप्त, नित्य काल के लिए सुखी है, एक गारंटी है, एक निर्विद्य मानाना, ये गारंटी दे रहे हैं, निश्चित रूप में ये सिद्ध है। एक भगवान का नाम उसको सुना, जो अभी तुरंत मरने वाला, वो भगवान की चिंता करते करते मरे। आजकल कहां करेगा वो, अस्पताल में दे दिया, वो तो अंतिम समय में सुख से मर भी नहीं सकता। इसलिए यदि मरना है भगवान का चिंतन करते करते उसके कान में भगवान का नाम सुनाया जाए, बस इसी से उसका कल्याण। और अधिक दिन यदि जीवित है और उसको कभी 5 वर्ष के बाद में, 1 वर्ष के बाद में, 7 दिन के बाद में मरना है तो उसे क्या करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनो। सबई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रथो छजे अहे तुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। इसी के लिए परीक्षित महाराज जी कहे, देखो अब 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति होने वाली है, भगवान की कथा सुनो, ये भगवान की भक्ति करनी है। इस समय तुम्हारा कोई भी खजाना, राज्य और जो कुछ है तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। छोड़ करके एकमात्र तुमको 7 दिन भगवान की कथा और लीला कथाओं को सुना रहा हूं, इसमें गारंटी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, अवश्य समय हो जाएगा। बड़े श्रद्धा के साथ में कथा सुनने लगे। भगवान की कथा ऐसी है, यदि थोड़ी सी कथा वो सुनेगा तो संसार की आसक्ति जरूर दूर होगी, उसके हृदय में सांत्वना आएगी, वो एकदम शांत हो जाएगा, सांसारिक विषयों के लिए वो अनुताप और शोक और मोह नहीं करेगा, और समय वही चीजें होगी। उन्होंने कहा जी देखो अब मैं हरि कथा आरंभ करता, ये कह करके उन्होंने आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सत्यम परम धीमहि ये आरंभ किया। क्या पहला श्लोक,
जन्मादस्य
जतो अन्वयादि तरतश्च अभिज्ञोत्तरा तेने ब्रह्म हृदय जाद कवे मुह्यन्ति जप सूरय तेजो बारमिदम जत विनमयो तिसर्गो अमृता धामना स्वयं सदा निरस्त फोकम सत्यम परम। जो परम सत्य है उसका मैं ध्यान करता हूं। परम सत्य क्या है, कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। ये ब्रह्म जो कहते हैं उनकी अंग कांति है, परमात्मा जो हमारे हृदय में साक्षी है वो उनका अंश है, ओंकार इत्यादि जो है उनका एक शाब्दिक रूप है, कृष्ण ही स्वयं भगवान। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सुखदेव गोस्वामी ने उनको परिचित माना। देखो भ्रम में मत रहो, कृष्ण ही परम तत्व है, इनसे बढ़कर के परम तत्व नहीं है। राम इत्यादि जितने भी अवतार हैं सब इन्हीं से अवतरित होते हैं। राम और कृष्ण और भगवान के अवतार अलग अलग नहीं है, वही कृष्ण ही कभी राम के रूप में कभी दूसरे अवतारों के रूप में आते हैं, उनकी लीलाओं में कुछ वैशिष्ट है किंतु है वही कृष्ण ही स्वयं। एते चांस कला जिन अवतारों को 24 अवतारों का नाम दिया हुआ, ये सब कृष्ण के अंश हैं, कोई अंश के कला कोई भी कला है, कृष्ण ही स्वयं भगवान यही समस्त अवतारों में जगत में आते हैं। इसलिए कृष्ण को ही अपना आराध्य मान करके जो व्यक्ति उनकी भक्ति करता है, कैसे भक्ति करता है, अहेतुक अव्यवहिता, अहेतुक माने बिना किसी कारण के, हम लोगों की प्रीति होती है स्वार्थ के लिए, कैसे प्रीति होती है स्वार्थ के लिए, उपनिषदों में ऐसा एक उपाख्यान आया। महाराज जनक के दरबार में बहुत से ऋषि लोग रहते थे, ब्रह्मवेत्ता इत्यादि, उसमें यज्ञवल्क नाम के एक ऋषि रहते थे, जो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे यज्ञवल्क का। उनकी दो पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी, वो भी विदुषी पढ़ी लिखी हुई महिलाएं थीं। कैसी महिलाएं पढ़ी लिखी, आजकल करके एमए बीए पढ़ करके मूर्ख बनने वाली नहीं, जो आत्मतत्व का कोई ज्ञान नहीं है, आर्थिक विद्या, भ्रष्ट चरित्र, ऐसा नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो कि हमारे परम तत्व को नहीं जानती उनके लिए या पुरुषों के लिए, तो वो बहुत विदेशी महिलाएं थी। इन्होंने कहा अपनी दोनों पत्नियों से, देखो तुम्हारे बाल बच्चे हो गए हैं, रहने के लिए मकान भी मैंने सब व्यवस्था कर दी, हजारों लाखों गायें तुम्हारे लिए रख दिया है, उस समय गोधिन ही धन था, यह सब धनों की जरूरत नहीं होती, बाग बगीचे में फल मूल कंद हो रहा है, गायें हैं दूध देती हैं, उसी का सब कुछ बना करके लोग खाते। बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती थी, शरीर में बल और ओज होता था, स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती थी, धारणा शक्ति वैसे होती थी। अभी तो हम कहेंगे जैसे आपका नाम क्या है, मेरा नाम है ऊर्ध्वमंथी। क्या कहा? ऊर्ध्वमंथी। जरा लिख दीजिए फिर से बोलिए तो ऊर्ध्व। इसके बाद में क्या? ऊर्ध्वमंथी। फिर एक मिनट में भूल गए, नामदारी पर नोट कर दिया, फिर याद ही नहीं आएगा। ऐसी तो हमारी घी शक्ति, धारणा की शक्ति नहीं है। ब्रह्मचर्य वैसा नहीं रहा, खाने में कोई अब कोई तत्व ही नहीं रह गया। धीरे धीरे सभी चीज का ह्रास और लोप होता चला जा। तो उनकी पत्नियों से उन्होंने कहा, जैसे देखो तुम्हारे लिए सबकी व्यवस्था कर दी है, अब मैं 50 वर्ष का हो गया हूं, अब तुम मुझे आदेश दो, मैं तीसरे आश्रम में आकर के और फिर संन्यास के लिए प्रस्तुत होऊंगा और भगवान का भजन करके जाऊं। एक पत्नी जो कत्यानी थी, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, हमारे बेटे लोग हैं, गोधन है, अलंकार है, घर है, सब कुछ है, आप जाकर के भजन कीजिए और हम लोग यहीं पर आकर के भजन। दूसरी पत्नी जो थी मैत्री, उसने कहा आप जाना चाहते हैं, ठीक है कि तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे करके जाइए खूब खुशी के साथ, किंतु हमारा एक प्रश्न है उसको क्या? आपने हमको जो पुत्र दिया, धन संपत्ति दी, गोधन दिया, अलंकार दिए, इसे मैं सारा जीवन सुखी रह सकती हूं या नहीं? ये सुनकर के बड़े खुश हुए, तुम ही एक ऐसी विदुषी महिला जी ऐसा प्रश्न हमसे कर रही है, दूसरी ने तो किया नहीं, इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान दूंगा, तुम इसके लिए योग्य पात्र है, क्वालिफाइड है। देखो धन से कोई सुखी नहीं हो सकता, परिजनों से कोई सुखी नहीं हो सकता, भवन से कोई सुखी नहीं होगा, हमारी जो विषयों की आसक्ति है, उसकी जो चाह है, सब कुछ मिलने पर भी हम नहीं सुखी हो सकते। क्यों? ये सब नश्वर वस्तुएं हैं। तुमको एक रहस्य की चीज बतलाता हूं, ये जगत में शुद्ध प्रेम नहीं है। हम गाय को पालन करते हैं, यदि गाय दूध नहीं देती हो और भविष्य में भी यह संभावना नहीं है कि उसका बच्चा होगा, दूध होगा, तो उस गाय को पालेंगे? हम गाय को पालते हैं अपने दूध पीने के लिए। यदि गाय बूढ़ी हो जाए, सूख जाए और उसके बच्चे ना हो और पतली लंबी गोबर कर रही हो, उस गाय को रखेंगे? नहीं रखेंगे। हम आयरन चेस्ट मंगाते हैं, उसमें अपने सोने अलंकार इत्यादि रखते हैं, सोने के अलंकार को सुखी होने के लिए रखते हैं ना, अपने लिए। एक हम पेड़ लगाते हैं बगीचा, किस लिए बगीचा लगाते हैं? छाया मिलेगी, फल मिलेगा। जिसमें कांटे हैं, जिसमें फल नहीं आएंगे, उसको पेड़ का कोई नहीं लगाता। इसलिए मां बाप अपने पुत्रों को स्नेह करती हैं, किस लिए? ये बड़ा हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो हमको देखेगा। और बेटा माता पिता को कब तक प्यार करता है? जब तक कि शादी नहीं हो जाती। बहुत बिरले आदमी होते हैं जिनके लड़के वैसे होते हैं, कुछ दिनों के बाद में वो अपनी स्त्री और बच्चों के देखरेख में लग जाते हैं, वो घर में स्नेह नहीं जाता। ये स्नेह कुछ इसलिए जगत में जब विचार करके देखा जाता है तो जगत में विशुद्ध प्रेम नहीं है। कोई ना कोई कारण होना चाहिए और कारण समाप्त हो जाएगा बस पृथ्वी टूट जाएगी। आज आप लोग देख रहे हैं भाजपा ना क्या एक है, दोनों का मिल हो गया है ना, जो परस्पर गाली देते थे और क्या क्या करते थे, जिसका मुख देखना पाप था, ये काल के अनुसार में स्वार्थ बस न तो ये होना था। ऐसे ही सभी चीजों को समझ लीजिए। इसलिए यह कहते हैं सवई पुनसान परो धर्मो जतो भक्ति जतो छजे। परम पुरुष कौन है? कृष्ण है, भगवान है। हम सबको देखते हैं, हमारे अंदर में है, हम उनको नहीं देखते, किंतु वो सर्वव्यापी हैं, बड़े दयालु हैं, हमारा सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं, वही नियमित रूप में सूर्य को ठीक समय पर उदित करते हैं, समुद्र में वैसे ही लहरी आती हैं, ठीक समय पर आएगी ज्वार भाटा इत्यादि, सबको कंट्रोल वही करते हैं। ग्रह नक्षत्र कहीं टकराते नहीं है, देखिए घूम रहे हैं, सब प्रभु कर रहे हैं, हमारे जन्म इत्यादि का भी कंट्रोल वही कर रहे हैं। उनके प्रति अहेतु की भक्ति हो, भक्ति किसको कहते हैं, ये हमारे पूज्य हैं, मैं इनका सेवक हूं, हम इनकी सेवा करें। सेवा का नाम ही भजन होता है, अजधातु सेवाया। इसलिए परम पुरुष जो कृष्ण है उनके प्रति हमारी भक्ति हो, कैसी, तय धारावत अविच्छिन्न गति से हो, आज हो और कल नहीं हो, सवेरे कर लिया और फिर करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, अविच्छिन्न गति से, और कोई स्वार्थ न हो, बस कृष्ण के लिए हो और एकांती कृष्ण में हो, इसको अनन्या भक्ति कहते हैं। ऐसे ये अहत की भगवान के चरणों में भक्ति। परीक्षित जी से करें, अभी तुम्हारा 7 दिन का समय है, अभी चित्त को भगवान में लगाओ, यदि शरीर से भी नहीं हो तो मन से करो। आदमी जो कुछ करता है शरीर से चलेगा 2 मील, 1 घंटे में 3 मील, 4 मील, 5 मील, और मन के द्वारा कितना चलेगा। जो कुछ मनुष्य कोई कर्म नहीं करता है तो मन में उसका संकल्प बना लेता है, ये हमको करना है, हमको एक घर बनाना है। जैसे यहाँ की ये सोसाइटी ने, वो उत्तरायण सोसाइटी ने पहले घर नहीं बना लिया, 10-5 आदमी ने मिल करके कहा, भाई पहाड़ों के लोग आते हैं, उनको रहने की कोई सुविधा नहीं है, गरीब लोग होते हैं, वो अधिक यहाँ पर फ्लैट लेकर के और ये जमीन खरीद करके, ये इतना उनके लिए संभव, हम लोग कुछ मिल करके हम लोग कुछ ऐसा बनाए कि कुछ उनके रहने के लिए रिहायती रूप में कुछ बनाए आवास, और उसमें बिजली का भी करें न कोई, जो बिलंच संकर्षम हो। अरे मनुष्य की बात क्या कहता है, ब्रह्मा और शंकर के समान भी ज्ञानी लोग हों, यहाँ पर ब्रह्मा और शंकर जी के लिए नहीं कहा गया, उनके समान दूसरे कोई यदि हो तो बिना गुरु के भव सागर को नहीं पा सकते, ये कष्टों से उनकी रिहाई नहीं है, छुट्टी नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। एक समय एक नदी के किनारे श्याम्याप्राश स्थान में व्यास जी कुछ बैठे थे, कुछ खिन्न से थे, उसी समय में कुछ चिंता कर रहे हैं। उस समय चिंता करते करते देखा जाए नारद जी वहां पर थे, हाथ में वीणा थी और नाम कर रहे थे। क्या नाम कर रहे थे, वो नाम सब समय राधिका रमण का नाम करते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
नारद जी जहाँ जाते हैं बस यही गोविंद का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम सब समय गान करते हैं, माया उनको स्पर्श नहीं कर पाती। नारद जी वहां पर उपस्थित हुए, उन्होंने आदर करके उनको बैठने के लिए स्थान दिया, वो बैठे, कहा जी व्यास तू बड़ा दुखी दिखता है, कोई चिंता तुम्हारे अंदर में आ गई है, क्यों इतना दुखी है, क्यों चिंता कर रहा है। नहीं यही तो मुझे मालूम नहीं क्यों मैं चिंतित हूं, रोगी दुखी रहेगा ये नहीं बताएगा कि हमारे पास में क्या रोग है, यदि ऐसा कोई रोग हो गया दिन पर दिन सूखता चला जा रहा है, हजम नहीं होता और कष्ट होता है, वो डॉक्टर के पास में जाएगा, डॉक्टर परीक्षा करेंगे ये क्या हुआ वो बतलाएंगे, तो मैं तो रोगी हूं, मैं दुखी हूं, बतला नहीं सकता ये क्यों हमको दुख कष्ट हो रहा है, हम क्यों चिंतित हैं, आप बतलाइए। मैं जानता हूं ये क्यों तुम दुखी, तुमने वेद शास्त्रों का, वेदों का भी भाग किया चार में, ऋग्वेद सामवेद जतुर अथर्व इत्यादि, इसको सरल रूप में शिक्षा देने के लिए तुमने पुराणों को बनाया, 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 शाखा पुराण, 36 प्रकार के ये पुराण बनाए, फिर वेदों के उपनिषदों का सार भाग लेकर के वेदांत दर्शन नाम का एक ग्रंथ किया है, जिन्हें 550 सूत्र हैं, और मध्वाचार्य, रामानुज, शंकर इत्यादि जितने भी बड़े बड़े विद्वान भक्त लोग हैं सब ने उसकी व्याख्या की। वो आचार्य ने जो वेदांत शास्त्र का अनुशीलन नहीं किया और न पढ़ा, तो उन्होंने सब कुछ किया। महाभारत लिखा स्त्रियों के लिए और पुराणों को जो उसमें स्त्रियां भी सहज सहज रूप में पढ़ें, ऐसी कथा की अवतारणा की जो सत्य है। और दो भाइयों में लड़ाई लगी संपत्ति की राज्य के लिए, मैं इसका उत्तराधिकारी हूं तो मैं, और उसी बीच में अर्जुन को कृष्ण रथ पर बैठा करके वहां पर ले आए, उसमें गीता का उपदेश दिया। यह महाभारत का ही अंश है। भीम ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी का इसने अपमान किया दुर्योधन ने और दुशासन ने, दुशासन इनका वस्त्र हरण कर रहा था और नंगी लेकर के उनको बैठाएगा दुर्योधन के जंघे के ऊपर, और जब दुर्योधन ताल ठोक रहा है यहां पर बैठाओ जल्दी से, और वो 60,000 हाथियों का बल लेकर के खींच रहा है, वो तो कृष्ण ने रक्षा की नहीं तो उसकी लज्जा जाती, वो तो एकदम शरणागत थी ना। ऐसी मनोरोचक सुंदर कथाएं उसमें भर दिया, और उसमें भगवान ने उनकी रक्षा की। अब गई लाज अब तक गिरधर गोपाल दूसरों को कोई दूसरा,
हे
गोविंदरा सुशरण अब तो बना है, बस प्रभु कहीं दूर नहीं थे आ गए। ऐसी सब कथाओं के माध्यम से गीता का उपदेश इत्यादि किया उन्होंने। महाभारत इस तरह से लिखा जिसमें सभी लोगों का अधिकार है, वेदों में हम लोगों का अधिकार नहीं, ब्राह्मण भी वेद नहीं जानते, वो गायत्री का मंत्र ही नहीं जानते, एक मुसलमान छोटा सा बच्चा होगा उसको भी कलमा पढ़ाएगा, ना छोटा सा जरूर कलमा पढ़ाएगा, एक क्रिश्चियन का बच्चा है उसको अंततः शुक्रवार को वहां पर जाने का निर्देश देंगे और बाइबल जरूर उसे पढ़ाएंगे। आज हिंदुओं की औनति इसीलिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण ही नहीं जानते हैं, न करते हैं, बहुत कम रेयर हैं, ब्राह्मण भी नहीं जानते, यहां तक उपनयन भी जो धारण करना चाहिए उनको नहीं आता। इस जाति को तो भगवान ही रक्षा कर रहे हैं, तो नहीं कब तक क्या हो जाना चाहिए। अभी तक हम लोग सो रहे हैं, अभी तक तो भारतवर्ष से पाकिस्तान को निकाल दिया, उधर में असम को निकाल दिया, मौलों के देखते देखते लंका निकल गया, राजस्थान और पंजाब का भाग भी निकल गया ना, लाहौर इत्यादि हम लोगों के अंदर में था, वो सब निकल गया। अब कुछ दोनों के बाद में ये भी न जाने डिवाइड होगा न क्या होगा, उस समय में हिंदू लोग कहां भाग करके जाएंगे, है कोई स्थान, अभी से सोचना चाहिए। इसलिए गायत्री का मंत्र सब बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने भी करना चाहिए, गीता भागवत का नाम सुनना चाहिए, इसका सार क्या है, आत्म तत्व क्या है ये जानना चाहिए, हम लोगों को परस्पर प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। हमारा तो धर्म इतना ऊंचा है कि मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, क्या जितने पशु पक्षी कीट पतंग है उसमें सभी में ब्रह्म है, जीवात्मा है, इतना ऊंचा। किंतु हम धीरे 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 बुद्ध हो जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं हो तो इतना राम राम कहना सिखाओ तो बच्चों को, गायत्री का मंत्र तो सिखाओ। आज हम समझते हैं कि ये जितने ब्राह्मण लोग यहां पर आए होंगे पहाड़ों से भी, उनसे मैं भी खड़ा कर दूं और पूछूं जैसे किसको किसको ये गायत्री रोज करता है, वो कहने लगे मुझको तो गायत्री हमने सुनाई नहीं, या करते क्या, ये हिंदुत्व है, अरे साथ कर लूंगी पढ़ लो और कलमा पढ़ लो, मुसलमान क्यों नहीं हो जाता है? नहीं मुसलमान है किस लिए? इसलिए गायत्री हमको जाननी चाहिए। तो वो सिखला रहे हैं, तुमने माने व्यास जी को कारण तुमने धर्म कर्म की बातें बहुत लिखी, वर्णाश्रम धर्म का तुमने ये सब लिखा है, शिवी का चरित्र लिखा तुमने, दधीची का लिखा, हरिश्चंद्र की बातें लिखी, यह दान कैसा करना चाहिए, ये सब बातें बतलाई, किंतु तुमने पुराणों को लिख करके वेदों को लिख करके ये अभी तक नहीं बतलाया जो हमारा आराध्यतम है। मुसलमान और क्रिश्चियन कहते हैं तुम लोगों का कोई एक ही आराध्य नहीं है, तुमका तो 1,035 करोड़ देवता तुम्हारे 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ तुम्हारे देवता है, एक तुम्हारा नहीं है, हमारा तो अल्लाह खुदा एक है, हम लोगों का एक ही है, किंतु हम जानते नहीं, हमने भेद कर बैठा, हमारा भी उपास्य एक ही है, एक ही तत्व है, किंतु क्लास के अनुसार में हमारे अंदर में क्लास है, उनमें क्लास कोई नहीं है, हमारे अंदर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50 क्लासेस, जो जैसा योग्य व्यक्ति है उसके लिए एक क्लास बनाए गए, क्योंकि क्लास समझने वाले कोई नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, तुमने ये नहीं कहा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण की आराधना कैसी होनी चाहिए और उनकी लीलाओं का तुमने वर्णन नहीं किया, विशेष करके तुमने ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति जो भक्ति स्वाभाविक है इसके प्रति तुमने कुछ भी नहीं किया। गोपियों ने सर्वोत्तम जो आराधना की कृष्ण की और उनका उनमें से राधिका का जो प्रेम है सर्वोच्च है, तुमने कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? मुझको पता नहीं था। एक बात करो, तुम भक्ति के योग के द्वारा चित्त को एकदम निर्मल करो, एकाग्र करो। कैसे होगा? भगवान का नाम करो और उनके अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, जैसा है वैसा ही हमको रियलाइज करा दे। जैसे गायत्री मंत्र है, शब्द तो नहीं बतलाऊंगा किंतु एक अंतिम पद बतला रहा, प्रचोदया शब्द है। माने क्या? प्रचोदया, जैसे है प्रभु आप हैं हमारे हृदय में, ऐसे उदित हो जाएं। भगवान तो सर्वांतर जानी, हमारे हृदय में जैसे हैं उदित हो जाएंगे, ये प्रार्थना है। इस भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल हो जाता है, भगवान अपने आप उदित हो जाते हैं। हमारे समस्त मंत्रों में ऐसे ही नमः स्वाहा इत्यादि। स्वाहा माने क्या? स्वाहा माने अपने को, हा माने अर्पित करना, मैं आपके चरणों में अपने को। ये सब मंत्रों के सारे आजकल जो मंत्र देने वाले उनको भी ये सब चीजें पता नहीं है, तो साधारण लोगों की तरह उनको तो पैसा चाहिए। यह धर्म भी, धर्म का भी उन्होंने ठीका उठा लिया और धर्म से विमुख रहे, हमारी जाति चली गई जहन्नम में। जगत में बहुत इन सब चीजों को जानने वाले, दूसरों को उद्बुद्ध करने वाले, प्रेरणा देने वाले आज वो स्रोत क्रमशः बंद हो गए। आज भागवत पाठ होता है सब जगह, 7 दिन पाठ होगा, इसमें पहले से तय करेंगे हमको 5,000 रुपया, 10,000, 20,000 रुपया चाहिए तो हम भागवत कहेंगे। हम लोग इसके विरोधी हैं। हम कीर्तन करेंगे कहीं जाएंगे कहीं पैसा लेकर नहीं, तो फिर क्या रहा? कथाओं का सार इसी में चला गया। उसकी श्रद्धा होने से तो वो सर्वस्व अपना जीवन ही हमको अर्पित कर देगा। उसमें मांगने की जरूरत क्या है? आप उनको लालसा करने की जरूरत क्या है? तुम ये देखो जो हम इनको भगवान की तरफ ले जा रहे हैं, इनका यथार्थ जीवन का मंगल कर रहे हैं, ऐसी भावना हमारे अंदर में, तब तो उस व्यक्ति का श्रोता का भी कल्याण होगा। परीक्षित महाराज से सुखदेव गोसाई ने कितनी दक्षिणा दी, 7 दिन तो कहा ना, और उनको परम पद में पहुंचा दिया, उनसे कितनी क्या लिया? वो देने लायक है क्या? सुखदेव गोस्वामी को देने के लिए क्या है? आप ही लोग हमको क्या देंगे? कुछ देने के लिए आपके पास, हमारे पास में एक श्रद्धा है, घर बात तो छोड़ करके आए हैं, हम रोटी जा रहे हैं वो मिल ही जाएगी, कपड़े अपने आप मिल जाते, हमको क्या देंगे संसारी चीज? आप तो अपने ही खुद अभाव में पड़े हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक संपत्ति दूंगा जो आप जीवन भर सुखी रह सकते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज उनको व्यास जी को नारद जी बतला रहे हैं, देखो तुमने भगवान की कथा संपूर्ण रूप में नहीं कही, कृष्ण स्वयं भगवान है तुमने डिक्लेयर नहीं किया। तुमने कभी शिव तत्व को बड़ा बनाया, कभी ब्रह्मा जी को, कभी गणेश को, कभी दुर्गा को, कभी काली को, कभी संतोषी मैया, इतनी नहीं निकल रही है ये सब देवताओं को तुमने कहां कहां से, किंतु सबके मूल में वही है, ये सब में भगवान की कुछ शक्ति है, ये लोग मिथ्या नहीं है, दुर्गा इत्यादि है, यह शास्त्र में प्रमाण है। इनको जथा जो सम्मान देते हुए किंतु कृष्ण ही सबसे उत्तम है, कृष्ण ही की शक्ति से ये सभी ऐसे कुछ दे सकते हैं, इसलिए इनको जथा सम्मान देना चाहिए। एक चीटी को भी जब हम सम्मान देते हैं तो इनको क्यों नहीं देंगे? इनको सम्मान देंगे। घर में पति और पत्नी है किंतु ससुर को भी तो सम्मान मिलना चाहिए, जेठ को भी सम्मान मिलना चाहिए जो जैसा सम्मान का पात्र, उसी तरह से कृष्ण ही हमारे परमाराध्य हैं। एक ही चांस कला और ये कैसे हैं? सर्वांतर्यामी हैं, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये कृष्ण सब कारणों के कारण, इसको समझना चाहिए। उनसे प्रार्थना कर, जितने अवतार हैं वो प्रभु के अवतार हैं, सभी अवतार एक ही तत्व हैं, केवल लीला की दृष्टि से ऐसे 10-20 दिखते हैं किंतु है नहीं। जैसे एक समझिए,
चंद्र एक है, वो तो नहीं, किंतु प्रतिपदा का चांद, द्वितीया का चांद, तृतीया का चांद, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और पूर्णिमा का चांद। ऐसा क्यों होता है? चांद एक ही है और सब समय वो पूर्ण ही है, किंतु सूर्य की रोशनी से यदि पूर्ण रोशनी पड़ती है सूर्य की उस पर, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। जब एंगल ऑफ विजन हो जाता है, जिस दृष्टिकोण से हमें उनको देखते हैं, अभी पृथ्वी पर यहां है, अभी सूर्य यहां से नहीं दिखाई पड़ता है, चंद्र पर उसकी अभी अभी ये कृष्ण कृष्ण पक्ष है, ये अंधेरी रात
शुक्ल
पक्ष, शुक्ल पक्ष, किंतु अभी अभी चंद्र
बादल छाया हुआ
है ना। अच्छा, अब इसकी सूर्य की रोशनी उसका पड़ रही है, अब कितनी पड़ रही है, पूरी है, पूर्णिमा तो है नहीं,
दो दिन है
पूर्णिमा, अब दो दिन में पूर्णिमा आने वाली है, अब ये बढ़ती जाएगी, पृथ्वी की छाया से पृथ्वी बीच में पड़ रही है, एक तरफ में चंद्र एक तरफ में सूर्य, इसलिए इसकी छाया इतनी दिख रही है। तब कहेंगे प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, चंद्र दो नहीं है। अभी हम आकाश में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से सूर्य और चंद्र दोनों को देख सकते हैं, वहां देखें जो पूर्णिमा ही पूर्णिमा। यह सब एंगल ऑफ विजन का ही है, दृष्टि का है। उसी तरह से कृष्ण ही एक परम तत्व है, जिनको जितनी भक्ति है उसी के अनुसार उनको कोई राम कोई परशुराम कोई वामन कोई कल्कि कोई कुछ रूप में देखते हैं, किंतु है एक ही वस्तु। और देवता क्या है? भगवान ने कुछ शक्ति संचरित कर दी है, वो शक्ति से उसमें कुछ पावर आ गया है और उसके द्वारा से जगत का ये सब काम कर रहे हैं। इस तरह से सूर्य में उन्होंने दी है शक्ति, सभी तुर वरण्यम, सूर्य किसी वरण्य है, ऐसे ये प्रभु हैं, कृष्ण ही एकमात्र प्रभु हैं, हम उनके जीव हैं, कोई बद्ध है कोई मुक्त है। बद्ध जी अभी हम संसार में पड़े हुए हैं और कुछ जीव है जो नित्य उनकी सेवा करने, हमको भी यहां से जाना है, कैसे जाएंगे? भक्ति के माध्यम से जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा तुम देखो ध्यान लगाओ, प्रभु को सरेंडर कर दो, आत्म शरणागति कर दो और देखेगा कृष्ण को पूर्ण रूप से। भक्ति जुगेन मनसी सम्यक पंडिते अमले अपश्यत पुरुष संपूर्ण मायांच जदा पार्श्वयाम, भागवत में इसको सुंदर रूप से वर्णन किया। भक्ति युग के द्वारा चित्त को उन्होंने आकृष्ट कर दिया और एकांतन्मय करके देखा, क्या कृष्ण को देखा। उनके बाल्यकाल से लेकर के अंतर्ध्यान तक की जितनी भी द्वारका तक लीलाएं हैं सबको उन्होंने एक एक करके देखा, जैसे कि हम सिनेमा देखते हैं, एक एक रील एक एक ऐसे चलती चली जाती है, इन कंटिन्यू से सब लीलाओं को उन्होंने देखा और देखा है जो जो भगवान का भजन नहीं करता है वो बद्ध हो रहा है इस संसार, और जो भजन करते हैं ऊपर में चले जाते हैं। इस तरह से उन्होंने पूरी तरह, इसके बाद उन्होंने इस चीज को भागवत में लिखा, समाधि भाषा तो क्या है, जैसे अब सूर्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूप शोक मोह भया। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए जो कुछ समाधि में उन्होंने देखा उसको हमारे सामने देखने के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने समाधि भाषा को रखा। आप लोग न्यूटन का नाम जानते होंगे, किस लिए प्रसिद्ध है? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आविष्कार किया, उसके पहले नहीं था ना कि था, क्या आविष्कार किया उन्होंने? उसके पहले हमारे शास्त्रों में ऐसा रहा हजारों बार, संकर्षण माने आकर्षण, वो पहले लाखों कोटि न्यूटन के पहले ये सब थ्योरिया थी। आम गिरता है ऊपर से नीचे, क्यों पृथ्वी पर गिरा? क्योंकि आकर्षण कर लिया नीचे। आग जला उसका फ्लेम किधर जाता है?
ऊपर।
आग का फ्लेम गुब्बारा हवा भर करके छोड़ दो किधर जाएगा? क्यों ऊपर जाएगा? उसको पृथ्वी कहीं नहीं खींच ली।